जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरी यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन यशोदा जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन यशोदा जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी तय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा
सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णु पाहात परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तरस श्री श्री महेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मैथिलीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवरम दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समय श्री शीतलाद सिंह देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरियस सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। सब पंखे बंद कर दीजिए, जितने पंखे चल रहे हैं इन सबको बंद कर दीजिए। और आप लोग और आगे जाएं, जो सुनने वाले हैं वो आगे आ जाएं। ये आपकी परीक्षा है, पंखा बंद कर दिया गया है, आपकी परीक्षा है कि फिर भी आप सुनते कि नहीं सुनते हैं। आप सब पंखे बंद कर दीजिए, जो सुनने वाले हैं वो सुनेंगे पंखा बंद करने के बाद भी। हाँ, सब लोग आगे आइए, आगे आइए, सब लोग आगे आइए। भगवद गीता हमारे तीनों प्रकार के ताप को दूर करती है, तो इसमें ये भी ताप दूर होगा। भगवद गीता हमारे तीनों प्रकार के ताप दूर करती है, तो ये ताप भी दूर हो जाएगा। ठीक है। और गीता की पुस्तक आप लोग ले सकते हैं, यहाँ एक पुस्तक में दो लोग तीन लोग भी हो सकते हैं, जो हिंदी पढ़ना जानते हैं किताब ले लीजिए। मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप अध्याय 14। अध्याय का नाम है प्रकृति के तीन गुण। श्लोक संख्या 12, पृष्ठ संख्या 453। सबने निकाल लिया पृष्ठ संख्या 453? निकालने में देर लग रही है, 453 पेज नंबर निकालने में देर लग रही है। सबने निकाल लिया 453 पेज नंबर? मेरे पीछे बोलिए, लोभा प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम असमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते निवृद्धे भरतर्षभ। लोभा प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणाम असमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभा प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणाम असमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। बोलिए,
लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणाम असमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते।
और कोई शब्दार्थ बोलिए। लोभः लोभ प्रवृत्ति ही कार्य आरंभ उद्यम कर्मणाम कर्मों में असमः अनियंत्रित इस प्रिया इच्छा रजसी रजोगुण में ये तानी ये सब जायन्ते प्रकट होते हैं विवृद्धे अधिकता होने पर भरत ऋषभ ही भरत वंशियों में प्रमुख अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे भरत वंशियों में प्रमुख जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति सकाम कर्म गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग। मेरे साथ बोली सब लोग। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकयं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांधिकं वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। श्लोक फिर से निकालिए। श्लोक को फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं लोभा प्रवृत्तिर आरंभा कर्मणाम असमह स्पृहा। पांच चीजें भगवान बता रहे हैं कि रजोगुण जब बढ़ता है तो पांच चीजें उत्पन्न होती हैं। जायन्ते, जायन्ते का मतलब जन्म लेती हैं। पांच प्रकार की चीजों का जन्म होता है जिस समय रजोगुण बढ़ता है। पहला क्या है? लोभ। सबसे पहला जो जन्म होता है वो क्या है? लोभ। फिर दूसरा है प्रवृत्ति, दूसरा है प्रवृत्ति, और तीसरा है आरंभ, कर्मों का आरंभ, और चौथा है असमह, असम अशांति, और पांचवा है स्पृहा तीव्र इच्छा। तो पांच चीजें उत्पन्न होती हैं। रजस्यतानि जायन्ते विवृद्धे भर्तृषव। तो जब रजोगुण बढ़ता है शरीर में तो पांच चीजों का जन्म होता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। क्या है? लोभ। लोभ का मतलब क्या है? संतुष्टि ना हो, जबकि पर्याप्त है, पर्याप्त है अपने जीवन निर्वाह के लिए, पर्याप्त है। क्या जरूरत है और? लेकिन लोभ, रजोगुण में क्या होता है? लोभ पैदा होता है, और चाहिए और चाहिए, लोभ है, है? जैसे कि दुर्योधन को लोभ है, पांडवों को जो है राज्य मिलना था, युधिष्ठिर महाराज को राज्य मिलना था क्योंकि उनके पिता महाराज पांडु को राज्य मिला था। धृतराष्ट्र बड़े भाई थे तो बड़े भाई को राज्य मिलना चाहिए, लेकिन अंधे थे इसलिए उनको राज्य का अधिकार नहीं मिला और छोटे भाई पांडु को राज्य का अधिकार मिल गया। अब राज्य का अधिकार जब छोटे भाई पांडु को मिला तो उनके पुत्रों को भी राज्य का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसके लिए धृतराष्ट्र ने और दुर्योधन ने पांचों पांडवों को मार डालने के कई प्रयास किए। अगर पांच पांडव मर जाएं तो फिर दुर्योधन को राज्य का अधिकार मिल जाएगा। तो पांच पांडवों को हर प्रकार से मार डालने के प्रयास किए, लेकिन कृष्ण रक्षा करते रहे। और अंत में फिर ये निर्णय निकाला कि ठीक है भाई, दुर्योधन को भी राज्य मिल जाए, पांडवों को भी राज्य मिल जाए। तो पहले से जो राज्य था महाराज पांडु का, हस्तिनापुर का राज्य था, तो वो दुर्योधन को दे दिया, दुर्योधन को मिल गया। और पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला, जो कि जंगल था। जहां पर आप लोग बैठे हैं ये इंद्रप्रस्थ है, जंगल था। लेकिन कृष्ण की कृपा से ये इंद्रप्रस्थ भी बहुत सुंदर बस गया। तो दुर्योधन को अब लोभ हो रहा है, क्या ये भी मुझे मिल जाए। और उसके पास जो है, मतलब जो नहीं मिलना चाहिए वो मिला उसको, दुर्योधन को। महाराज पांडु का जो राज्य था वो हस्तिनापुर का राज्य पूरा दुर्योधन को मिल गया। इसको कहते हैं लोभ, है ना। इसलिए अर्जुन ने कहा है, यद्यपि तेन पश्यन्ति लोभो पतचेतसा, लोभ के कारण इनका चित्त नष्ट हो चुका है, इसलिए देखते नहीं है। कुलक्षय कृतम दोषम, कि कुल का नाश होने में कितना दोष है ये लोग नहीं देखते हैं। क्यों? लोभ से इनका चित्त नष्ट हो गया है। तो कुल का नाश होने में दोष नहीं देखते, और मित्र द्रोहे चपात का, और मित्र के साथ द्रोह करने में भी दोष नहीं देखते। पांच पांडवों ने इनके साथ मित्रता का व्यवहार किया, जबकि ये बचपन से शत्रुता का व्यवहार करता रहा और इनको मार डालने की कोशिश करता रहा, और कृष्ण की कृपा से इनकी रक्षा हुई। ये तो भी पांच पांडव इनके साथ मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं। जब ये दुर्योधन पांच पांडवों को अपनी शक्ति दिखाने के लिए, एक तो कपट से इनका राज्य छीना था पांडवों का, और 12 साल का वनवास दिया था कपट की चाल से, और जब वनवास में थे तो दुर्योधन वहां भी जो है अपनी सेना लेकर के आया चढ़ाने के लिए, कि देखो हम कितने सुखी हो, तुम लोग कितने दुखी हो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य और हमारा कितना सौभाग्य है। और इंद्र ने जब देखा कि ये दुष्ट पांडवों का अपमान करने के लिए आ रहा है, तो गंधर्वों को भेजा कि तुम इसको बांध करके स्वर्ग में ले आओ। तो चित्ररथ नाम के गंधर्व जो है आए और युद्ध किया, और दुर्योधन को बांध करके इंद्र के पास ले जा रहे थे। तब यही दुर्योधन जो इन पांडवों का अपमान करने के लिए आया था, चिल्लाने लगा कि भैया बचाओ, युधिष्ठिर भैया बचाओ। और युधिष्ठिर ने की आज्ञा से अर्जुन ने फिर गंधर्वों को पराजित किया और दुर्योधन की रक्षा करी, जिनके साथ इसने महाशत्रुता की और महान अन्याय किया और मार डालने की कोशिश की, जहर दिया और मकान में आग लगाई, स्त्री का भी अपमान किया, सब कुछ उनके साथ भी, उसके फिर भी पांडवों ने इसके साथ जो है मित्रता का व्यवहार किया और रक्षा की, और उन्हीं के साथ में ये अब और भी द्रोह कर रहा है, मित्र द्रोह। कितना बड़ा मित्र द्रोह है, कोई हद से ज्यादा। लेकिन मित्र द्रोह में ये पाप नहीं देखता है दुर्योधन, और कुल के क्षय होने में भी दोष नहीं देखता है। तो अर्जुन ने मतलब कहा कि इनका लोभ के कारण इनका चित्त दूषित है। कथम न गियम अस्मा भी पापात अस्मान निवर्तितुम, तो हम क्यों ना विचार करें इस पाप से छूटने का। कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भीर जनार्दन, कि कुल के नाश होने में जो दोष हम देख रहे हैं, तो हम क्यों ना इससे जो है बचने की कोशिश करें। अर्जुन का कहना है कि हमारी ओर से तो मित्र द्रोह नहीं हो रहा है, ये फिर भी युद्ध करने के लिए तैयार है तो हमें युद्ध करना पड़ रहा है, तो हमारी तरफ से तो मित्र द्रोह नहीं हो रहा है कि हम युद्ध कर रहे हैं इनके साथ, लेकिन ये तो मित्र द्रोह कर रहे हैं जो हमारे साथ युद्ध कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं लोभ। क्यों? सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, फिर भी उसका देखते हैं है? तो उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है? इसको कहते हैं लोभ, है ना। तो पहला जो रजोगुण का जो प्रभाव है वो क्या है? लोभ। लोभ होता है। लेकिन लोभ को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। लोभ है कृष्ण की सेवा करने का लोभ, भक्तों की संगति करने का लोभ, कृष्ण कथा सुनने का लोभ, तो भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है लोभ, है ना। तो ये पहला है लोभ, रजोगुण का प्रभाव है लोभ। फिर यहाँ प्रभुपाल लिखते हैं कि रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वो अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वो महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वो उस महल में सदा रहेगा। तो ये है लोभ। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति तो प्रभुपाद लिखते हैं वो इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति का मतलब है सुख आराम धन की इच्छा को लेकर क्रिया में प्रवृत्त होना, इसे प्रवृत्ति कहते हैं। तो ये प्रवृत्ति है। इसके बाद भगवान क्या करें? आरंभा, आरंभा कर्मणाम आरंभा, कर्मों का आरंभ। तो प्रभु कहते हैं उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है, वो सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है, इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो प्रवृत्ति का मतलब क्या है? कि सुख आराम धन की इच्छा को लेकर क्रिया में प्रवृत्त होना प्रवृत्ति है। तो ये दूसरा रजोगुण का जो प्रभाव है क्या है? वो प्रवृत्ति है। फिर तीसरा क्या है? कर्मणाम आरंभा, कर्मों का आरंभ। धनी है और बड़ा कहलाने के लिए, मान आदर प्रशंसा पाने के लिए नए नए कर्म करना, नए नए व्यापार करना, नए नए व्यापार शुरू करना, नई नई फैक्ट्रियां खोलना, नई नई दुकानें खोलना, भोग और संग्रह के लिए नए नए कर्म शुरू करना, इसे कहते हैं कर्मणाम आरंभा, कर्मों का आरंभ। इसलिए भगवान 12वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं सर्व आरंभ है परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिया। तो सब प्रकार के आरंभों का परित्याग करता है वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है। 14वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीता सवचेते, जो सब कर्मों का आरंभ का त्याग करता है वो गुणातीत कहलाता है। और 4वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी आरंभ कामना और संकल्प के से रहे थे। अगर कर्मों का आरंभ करता भी है वो तो कामना और संकल्प उसके अंदर नहीं, इंद्रिय तृप्ति की कामना या इंद्रिय तृप्ति के संकल्प नहीं होते हैं। तो ये कर्मणाम आरंभा कहलाता है कि नए नए कार्य शुरू करना, नया नया व्यापार शुरू करना, केवल मैं धनी बनूं या बड़ा कहलाऊं, अपना प्रभाव जमाऊं, इसके लिए। इसके बाद क्या है? तीन हो गए, चौथा क्या है? असमहा। असमहा का मतलब क्या है? अशांति। सम का मतलब है शांति, असमा का मतलब है अशांति। इच्छा के अनुसार जब धन संपत्ति नहीं मिलती, प्रतिष्ठा नहीं मिलती, तो अशांति होती है। रजोगुणी व्यक्ति को अशांति होती है। जितना वो चाहता था उतना नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला, उसको इस बात की बड़ी अशांति रहती है, असंतोष रहता है। इसको कहते हैं असमा। जबकि ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म क्या है, समो दमस तपासोम, सम। सम का मतलब है मन का समन, है ना। तो यहाँ असमह कर्मणाम असमह, और पांचवा क्या है, स्पृहा। स्पृहा का मतलब क्या है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की चिंता, इसको स्पृहा बोलते हैं। कोई भी चीज पाना है तो उसको जो है चिंता पैदा हो जाती है कि कैसे मिलेगी, स्पृहा, है ना। तो भगवान कहते हैं रजस्येतान जायन्ति विवृद्धे भरतर्षभे। रजोगुण से उत्पन्न, रजोगुण जब बढ़ता है तो ये पांच चीजें उसके अंदर होती हैं, है ना। लोभ है, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, और असम और स्पृहा, ये पांच चीजें होती हैं, है ना। इसमें प्रवृत्ति और कर्मों के आरंभ में अंतर है। प्रवृत्ति होती कोई परिस्थिति आने पर वो व्यक्ति किसी क्रिया में प्रवृत्त होता है, लेकिन कर्मों का जो आरंभ है वो क्या होता है, भोग और संग्रह के लिए नए नए कर्म करना। प्रवृत्ति तो परिस्थिति आने के पर प्रवृत्ति होती है, और वो परिस्थिति अगर चली जाती है तो निवृत्ति भी हो जाती है। लेकिन कर्मों का जो आरंभ है वो क्या होता है, परिस्थिति नहीं है लेकिन तो भी वो नए नए कर्म करता है। और ऐसे ऐसे कर्म करता है जिनको वो संभाल भी नहीं पाएगा। उसकी इतनी योग्यता भी नहीं है कि उसको चला पाए, लेकिन फिर भी वो काम हाथ में लेता है। रजोगुणी व्यक्ति, है ना। तो पहली बात है उसके अंदर लोभ है। तो ये सब चीजें क्या है, ये रजोगुण जो है, जब भगवान ने जब अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि कोई व्यक्ति ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है, तो भगवान ने बताया कि रजोगुण ही पाप कर्म कराता है। रजोगुण समद्भवा काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भवा। रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध ही पाप कराता है। महाशनो, महाशनो का मतलब क्या है, कि ये बहुत खाने वाला है, बहुत खाने वाला है, और महापापमा और महापापी है। काम क्रोध ये जो है इसकी खुराक बहुत ज्यादा है और ये बहुत पापी है, महापापमा। विज्ञानम है वैरिणम, इसको ही तुम वैरी जानो, ये शत्रु है ना। तो अर्जुन जो है मतलब प्रश्न कर रहे हैं भगवान से कि व्यक्ति पाप कर्म क्यों करता है, ना चाहते ही पाप कर्म क्यों करता है, लेकिन रजोगुण उससे पाप कर्म कराता है, ना चाहते ही भी पाप कर्म कराता है। पाप कर्म नहीं करना चाहता तो भी पाप कर्म उसको करना पड़ता है उसकी इच्छा के विरुद्ध। क्यों, क्योंकि रजोगुण, क्योंकि वो रजोगुण को भोगना चाहता है तो रजोगुण उससे बलपूर्वक ये कार्य कराता है। ये जो रजोगुण प्रकृति के जो तीन गुण हैं, इनके अपने अपने बंधन होते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी गुण को भोगना चाहता है तो उस गुण का जो भी बंधन है उसको प्राप्त होगा, बंधना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं मतलब कर सकते कि आप उस गुण को भोग लें उसे बंधे नहीं। अगर आप गुण को भोगना चाहते हैं तो उसे आपको बंधना भी पड़ेगा। रजोगुण का बंधन है भगवान बताते हैं। अगर आप रजोगुण को भोगना चाहते हैं तो इस बंधन में आपको बंधना पड़ेगा और पाप आपको करने पड़ेंगे। जबकि पाप आप नहीं करना चाहते हैं, आप रजोगुण को भोगना चाहते हैं लेकिन पाप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता। आप रजोगुण को भोगना चाहते हैं और पाप नहीं करना चाहते हैं, ये हो नहीं सकता। तो ये शत्रु है रजोगुण। तो भगवान जो है इस अध्याय में बहुत गहरा विश्लेषण करते हैं प्रकृति के तीन गुणों का, बड़ा गहरा विश्लेषण है। और इस विश्लेषण से आप तीन गुणों के अलग अलग बंधन को समझ सकते हैं। सतोगुण तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम्। निर्मल होने के कारण और प्रकाशक होने के कारण सुख संगे न बदनाति ज्ञान संगे न जानक है। सुख की आसक्ति से ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। और कौन सा सुख? सतोगुण सुख। सतोगुण सुख कैसा होता है? यत् तदग्रे विषमे परिणामे अमृतोपमम्। प्रारंभ में विष के समान हो और परिणाम में अमृत के समान हो। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आदि बुद्धि प्रसादजम। तो अपनी बुद्धि की प्रसन्नता से जो सुख प्राप्त होता है, जो प्रारंभ में विष के समान हो और परिणाम में अमृत के समान हो, वो सात्विक सुख है। तो सतोगुणी सतोगुण जो है आपको बांधेगा सुख से और ज्ञान से बांधेगा। ज्ञान से बांधेगा। ज्ञान का मतलब क्या है? कि आपके अंदर हमेशा ये विचार रहता है कि मेरा कल्याण किससे होगा, कि मुझे ये कार्य करना है, किस प्रकार से मेरा कल्याण होगा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे मेरा परम कल्याण हो। तो ये ज्ञान है। लेकिन रजोगुण में तो ज्ञान ढक जाता है, है? विद्या नमे वरिणम आवृतम ज्ञान अमेते न ज्ञान नो नित्य वैरिना। काम रजोगुण से उत्पन्न जो काम है ये ज्ञान को ढक देता है, क्योंकि ज्ञानियों का नित्य वैरी है। आवृतम ज्ञान अमेते न ज्ञान नो नित्य वैरी ना काम रूपेण कौन थे दुष्पूरे नीने चा। ये काम रूपी दुष्पूर अग्नि के समान है। अब व्यक्ति के अंदर वो भावना ही नहीं रहती कि मेरा किसमें कल्याण है किसमें कल्याण नहीं है। वो चाहता है कि मैं भोग लूं, और अगर मैं ये भोग मिल जाए मुझे तो मेरा सबसे बड़ा लाभ। जो प्रारंभ में अमृत के समान है और परिणाम में विष के समान है, वो सात्विक, वो रजोगुण सुख। विषयों का इंद्रियों से संयोग होने पर जो प्रारंभ में अमृत के समान लगता है और परिणाम में विष के समान होता है, वो रजोगुण सुख है। तो रजोगुण जो है रजोगुण सुख से बांधता है। तमोगुण तमोगुण सुख से बांधता है। तमोगुण सो क्या है? यदग्रचानुबंधे चा सुखम मोहनम आत्मना, जो प्रारंभ में भी आत्मा को भ्रमित करता है और परिणाम में भी आत्मा को भ्रमित करता है। तत् सुखम निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। निद्रा आलस्य और पागलपन से जो उत्पन्न होता है सुख, वो तमोगुणी सुख है। निद्रा आलस्य और पागलपन तमोगुण, तो तमोगुण जो है आपको इस प्रकार के सुख से बांधेगा, आपको बंधना पड़ेगा। सतोगुण में व्यक्ति पाप कर्म हो सकता कर रहा हो, सतोगुण में कोई व्यक्ति हो सकता पाप कर्म कर रहा हो, लेकिन उसका भाव क्या रहता है कि मैं पाप नहीं करना चाहता, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे पाप ना लगे, ऐसे में उसको पाप नहीं लगता। सतोगुणी व्यक्ति जो है अगर पाप करता भी है तो उसका विचार यही रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे पाप ना लगे, और अगर वो इस तरह से पाप कर भी रहा है तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि उसका पाप करने का विचार नहीं है। कुछ ना जानने के कारण, लेकिन वो जानने की कोशिश करता है, है? वो जानने की कोशिश करता है कि मैं पाप से कैसे बचूं, जबकि रजोगुणी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पाप कर्म में लग जाता है। अगर नहीं भी चाहता है पाप करना तो भी उसको विवश होकर पाप करना पड़ता है। सतोगुणी व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति अगर पाप करता भी है तो इस कारण से पाप करता है कि उसे पता नहीं था इसलिए पाप कर रहा है, और जैसे उसे पता चल जाता है कि पाप कर्म है तो तुरंत छोड़ देता है, ये पाप कर्म है। जैसे सदन कसाई था तो सालग्राम की शिला से जो है वो मांस तोलता था, वो मांस बेचता था, सतोगुणी था, मांस बेचता था। क्यों मांस बेचता था? क्योंकि उसके वंश में उसके पिताजी यही काम कर रहे थे, इसलिए वो भी कर रहा है। तो उसे पाप कर्म नहीं हो रहा था, और जब उसे पता चला कि शालिग्राम शिला है, ये शालिग्राम शिला है, ओहो मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया, हाँ? भगवान को जो है मांस तोलने का बांट बनाया, तो उसको बड़ा दुख हुआ, उसने मांस बेचना छोड़ दिया। तो सतोगुणी व्यक्ति भी जो है अगर पाप करे तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि उसका भाव वैसा नहीं है। विशेष रूप से पाप कर्म तो लगता है क्या भावना के कारण, कि आप गलत भावना से कोई काम करते हैं तो पाप कर्म बनता है, अच्छा काम भी करते हैं गलत भावना से करते हैं तो पाप कर्म बनता है। जैसे दुर्योधन था, तो उसने यज्ञ किया, वैष्णव यज्ञ किया, लेकिन उसकी भावना अच्छी नहीं थी, वो पांडवों को चढ़ाना चाहता था, तो इसलिए वो यज्ञ भी जो है उसका क्या है, रजोगुणी यज्ञ है। जैसे दक्ष, दक्ष भी यज्ञ कर रहे थे, लेकिन क्यों यज्ञ कर रहे थे? इस यज्ञ में मैं सब देवताओं को बुलाऊंगा और शिव जी को नहीं बुलाऊंगा, जिससे उनको पता चलेगा है कि वो कितने नीच हैं। मैंने सब देवताओं को बुलाया और शिव जी को नहीं बुलाया, तो शिव जी को मैं नीचे दिखाना, नीचे दिखाने के लिए यज्ञ कर रहा हूं। तो यज्ञ तो कर रहा है, अपने आप में बड़ा पवित्र कर्म है, लेकिन भाव कैसा है? दूषित। तो इस प्रकार से दूषित भाव के साथ आप अच्छा कर्म भी करते हैं तो अभी वो अच्छा नहीं होता। जैसे कोई ब्राह्मण वेश्या के घर के सामने वो बैठ करके शास्त्र पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ता है, लेकिन देखता है वेश्या को कि वेश्या जो है कितना गलत काम कर रही है, और वो शास्त्र पढ़ता है दिखाने के लिए कि देख मैं कितना पवित्र काम कर रहा हूं। तो वेश्या को दिखाता है कि तू कितना दूषित कर्म करती है और मैं कितना पवित्र कर्म करता हूं, तो उसका भाव क्या है? दूषित भाव। तो वो शास्त्र नहीं पढ़ रहा है, वो केवल दिखाता है कि मैं शास्त्र पढ़ता हूं। तू कितना गलत काम करती है, मैं कितना पवित्र काम करता हूं। और वेश्या क्या सोचती है कि मैं कितना दूषित काम करती हूं, ये ब्राह्मण कितना पवित्र काम करता है। तो अंत में क्या हुआ? वेश्या तो स्वर्ग में गई और ये ब्राह्मण नरक में गया। इसलिए कोई भी कर्म जो है अपने आप में पाप या पुण्य नहीं होता है, उसके पीछे भाव कैसा है उससे जो है उस वो कर्म पाप या पुण्य बनता है। तो भगवान जो बता रहे हैं कि रजोगुण के बढ़ने से ये लक्षण पैदा होते हैं, तो ये हमको बहुत अच्छी तरह से इनको समझना चाहिए। ये 14वां अध्याय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान ने गुणों के कार्य बतलाए, कैसे गुण कार्य करते हैं। आप किसी भी गुण को भोगना चाहते हैं तो उसमें जो भी दोष हैं तो वो भी आपको लेने पड़ेंगे। रजोगुण का जो है ये प्रभाव होता है, लोभ और प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब क्या है? लोभ तो हमने बता दिया कि निर्वाह के लिए जितना भी आवश्यक है उसको उसके पास है, लेकिन तो भी वो लोभ कर रहा है ना। लेकिन प्रवृत्ति क्या है कौन बताएगा? प्रवृत्ति का मतलब क्या है? कौन बताएगा? मान बढ़ाई धन की इच्छा को लेकर के जब किसी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो वो प्रवृत्ति कहलाती है। जैसे असुर पूतना, तो इनको जो है उत्पात करना, तो इनका जो है मतलब स्वाभाविक कार्य है, उत्पात करते हैं। वो कंस की आज्ञा मिल गई, कंस की आज्ञा मिल गई असुरों को कि 10 साल के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालो। तो ऐसी परिस्थिति में वे इस कार्य में प्रवृत्त हो गए क्योंकि इसमें अपना बड़ा लाभ समझते हैं कि हमें बहुत सुख मिलेगा। हत्या करने का आदेश मिल गया हमें और हत्या करने में उनको सुख मिलता है। 10 दिन के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं उन सब की हत्या करो। तो परिस्थिति आने पर वो काम शुरू करता है, प्रवृत्त हो जाता है प्रवृत्ति। फिर कर्मों का आरंभ, कर्मों का आरंभ इसका क्या मतलब है? हाँ, धनी या बड़ा कहलाने के लिए, मान आदर प्रशंसा पाने के लिए नए कर्म, नया नया व्यापार, नई नई दुकान खोलना, नई नई फैक्ट्री खोलना, एक व्यक्ति सोचता है कि नया व्यापार करेंगे तो उसमें पता नहीं कितनी कठिनाइयां आएंगी, अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है, छोड़ो क्या करना। सतोगुणी व्यक्ति सोचता है कि अभी नया व्यापार करना आसान लग रहा है लेकिन आगे चल करके इसमें ऐसी भी कठिनाइयां आ सकती हैं जिनके बारे में अभी मैं नहीं सोच रहा हूं। रजोगुणी व्यक्ति ये नहीं सोचता और तुरंत कोई भी नया काम है वो शुरू कर देता है करना। कर्मणाम आरंभा। फिर असमा, असमा का क्या अर्थ है कौन बताएगा? असमा समा का उल्टा है असमा। समा का अर्थ क्या है? हाँ, समा का मतलब है शांति और असमा का मतलब है अशांति। अशांति और अशांति का मतलब है कि उसकी इच्छा है कि मेरा इतना धन होना चाहिए, मुझे इतना फायदा होना चाहिए, इतना फायदा क्यों नहीं हुआ? जबकि सतोगुण सोचता है कि हो सकता नुकसान हो जाता तो मुझे इतना फायदा मिला, ये भी भगवान की कृपा है, मुझे इतना फायदा तो मिला, नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं मिलता और पूरा का पूरा परिश्रम हो सकता था। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति इतना नहीं सोचता है, वो क्या सोचता है कि इतना तो मुझे मिला लेकिन इससे ज्यादा क्यों नहीं मिला, मुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए। और फिर क्या है अंत में रजोगुण के बढ़ने पर क्या होता है? स्प्रिया। स्प्रिया का मतलब चिंता। कर्मणाम अस्मा स्प्रिया, कर्मों में चिंता। चिंता है किसी वस्तु को प्राप्त करने की, उसको चिंता होती है। तो इस तरह से आज के श्लोक में भगवान ने रजोगुण का वर्णन किया है। स्प्रिया का एक उदाहरण पतंगा भी है। पतंगा जो है आग में कूद जाता है। आप भी देखते हैं आग को, जो जिसको अनुभव नहीं है तो पहले अनुभव में हर कोई आग को देखता है और सोचता है कि मैं छोड़ूं। लेकिन जैसे आग के पास हाथ बढ़ाता है वो गर्म लगती तो हाथ खींच लेता है, लेकिन पतंगा पतंगा चूंकि अशांत है इसलिए वो जब है आग में जब वो मतलब जाता है आग के पास जाता है तो सीधे आग के अंदर चला जाता है। क्योंकि वो जैसा भोगना चाहता है तो उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं देखना चाहता। अग्नि को वो देखता है कि बड़ा सुंदर रूप है, इसको मैं भोग लूं। लेकिन भोग करने की स्पृहा इतनी ज्यादा है कि उसको अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आज के श्लोक में भगवान ने जो है ये बातें बताई हैं, और अर्जुन को कौन से शब्द से संबोधित किया है, भरतर शब्द। भरतर शब्द का मतलब क्या है, भरत और ऋषभ, ऋषभ माने श्रेष्ठ, और भरत का मतलब है भरत वंशियों में, भरत वंशियों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ये पांच चीजें हैं जो कि रजोगुण के बढ़ने पर होती हैं, और भगवान अर्जुन से भरत ऋषभ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भरत ऋषभ का मतलब क्या है, भारत भरत भा रत, भा का मतलब है भा, भा का मतलब है प्रकाश, और रथ का मतलब है जो आसक्त है। तो भरत का मतलब क्या है, जो व्यक्ति प्रकाश में आसक्त है। अर्जुन भी भरतवंशी हैं, लेकिन भगवान के आदेश के अनुसार अर्जुन क्या करते हैं, मैं क्या बता रहा था, हाँ भा, भरत का मतलब है कि जो प्रकाश में रथ है। तो भरत के वंश में अर्जुन पैदा हुए हैं, है? तो प्रकाश में रति ये सदगुण का लक्षण है। तो अर्जुन के अंदर भी इच्छा है प्रकाश पाने की, और भगवान अर्जुन को गीता का प्रकाश दे रहे हैं। अर्जुन चूंकि उनके ही वंश में है इसलिए अर्जुन के लिए भगवान ने भरत ऋषभ का शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो मैं प्रश्न करूं, लोभ का उदाहरण कोई हमने जो दिया है वो क्या है, लोभ का उदाहरण दुर्योधन क्या है, किस तरह का लोभ है,
राज्य से प्राप्त नहीं होना था, मिलने के बाद ही उसको राज्य प्राप्त हो गया, और जो उसका नहीं था उसके हक का था उसके लिए वो नाराज रहता था राज्य, और शुरू से उनको
पांडव लोगों ने जो है दुर्योधन के साथ इतना मित्रता का व्यवहार किया कि वर्णन नहीं किया जा सकता, और दुर्योधन ने पांडवों के साथ इतना शत्रुता का व्यवहार किया कि वर्णन नहीं किया जा सकता, और फिर भी दुर्योधन उसको अपना अधिकार समझता है, एहसान नहीं मानता बल्कि अपना अधिकार समझता है। तो ऐसे होते हैं मूर्ख। एक सामान्य व्यक्ति सोचता है कि भाई इन्होंने मेरी रक्षा करी थी अब तो मैं जीवन भर इनका एहसान मानूंगा, लेकिन दुर्योधन नहीं सोचता, अरे मेरे जीवन की रक्षा की तो तुम्हारा तो फर्ज होता है, तुम तो मेरी प्रजा हो, मैं तो राजा हूँ। तो दुर्योधन के साथ में जितना भी अच्छा व्यवहार किया पांडवों ने, उतना अधिक दुर्योधन पांडवों को गलत समझता था। हैं? गलत फायदा उठाता था ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।